गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। आप करुणा के सागर हैं, मैं करुणा के योग्य नहीं। मैं समस्त जितने दुर्गुण हैं समस्त दुर्गुणों का आकर हूं, ऐसा हूं। भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक है या नरोत्तम ठाकुर का मुझे याद है। आमी की सब समय कामी
हमार जीवन सदा पापे रतो,
हमार जीवन सदा पापे नहीं कपुण्य रलेश परे रो बे बियाची जे कतो बियाची जीवे रे क्लेश। मैं सब समय जीवों को क्लेश दिया, हाय हाय करते हुए कर। जब दूसरों का दुख देखता हूँ तो हृदय आनंद से उछल उठता है, और जब पर सुख है दुखी सदा मिथ्या भाषी
पर सुख दुख को,
ये सब चित्रण किया है जीवों के लिए, हम लोगों के लिए। जो भक्त बनना चाहते हैं इसको प्रार्थना करेंगे, बड़े करुण स्वर से करेंगे, और वास्तविक स्थिति हम लोगों की यही है। तो इस तरह से यदि वो प्रार्थना कर रहा है, कृष्ण रास कर रहे हैं, अप्रमत्त हैं, तो सुनेंगे कि नहीं? अत्यंत अभी दुर्जन है, कामी है, भोगी है, लोलुप है, ईर्ष्यालु है, किंतु प्रार्थना कर रहा है अंतर हृदय से, तो सुनेंगे नहीं? जरूर। कैसे सुनेंगे? इनके माध्यम से। कौन किनके माध्यम?
अंतर्यामी परमात्मा।
अब वहां पर वो कृष्ण वो प्रार्थना सुन करके स्थिर नहीं रह करके झट यहाँ पर पहुंच जाए, और थोड़ा सा और उन्नत हो जाएगा ना। अभी सुनेंगे तो बोलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि इसकी ममता तो जगी नहीं है। अभी केवल मंजरी लगी है, मंजरी में सरसों होता है ना, जैसे कोई हरी हरी कोई चीज गोल गोल लगती है, उसी समय इसको तोड़ लिया जाएगा तो आम का स्वाद आएगा। उसको क्या करेंगे? रहने दो, उसको बड़ा होने दो, पुष्ट होने दो। धीरे 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 वो पुष्ट होते होते इतना बड़ा हो गया। अभी मत करो, अभी अमिया है। प्रभु क्या करेंगे? और उसको परिपक्व बनाएंगे और वो बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाने के बाद में अब थोड़ा सा पीलापन भाव आया, कठोरता है, सूंघने में बड़ा अभी आ रहा है किंतु अभी खट्टापन है। धीरे धीरे और भी पकने देंगे, सूर्य की रोशनी इसमें लग रही है खूब। देखो ये जितना ही अधिक लगेगा ना ताप, आम उतना ही पकेगा और रसाल हो जाएगा। जब एकदम पक जाएगा तो डंडल से वो अपने आप
डूब जाएगा,
उस समय रसाल। ऐसे प्रभु जब तक उस स्थिति में नहीं आएंगे हम भक्त, तब तक के लिए पकाते हैं। कैसे? सांसारिक तापों के द्वारा, और जब ये खत्म हो जाता अपने विरह ताप के द्वारा, तो वो भक्त पकता है, परिपक्व हो जाता है। और जब फिर उसको ऊपर बढ़ा करके उसको ग्रहण कर लेता है, तब भगवान के चरण कमलों की मधु का वो रसास्वादन करता है, प्रभु भी उसके प्रेम का रसास्वादन करता है। तब तक के लिए ये परमात्मा और साक्षी जैसे बने रहते हैं। किंतु बिल मंगल का जो ही भाव आया, क्या किया उसके लिए? सिख पुच्छ मौली होकर के उसके हृदय में कृष्ण जैसे आए। हनुमान जी के साक्षी कौन हैं अंदर में?
रामचंद्र
जी, सीता रामचंद्र। इस तरह से समझो, इसका ये तात्पर्य इस श्लोक का ये दिखलाया कि ज्ञानी लोग योगी लोग स्वानुभव सुखप्रद ब्रह्म में ममत्व का अभाव रखते हैं, इसलिए उसके प्रति अनुरक्त नहीं होते। और हम लोग अभी से भक्ति में, ये कृष्ण अपने हैं, श्रीमती राधिका जी अपनी हैं, हम उनके हैं, वो हमारी हैं, इस भावना को लेकर के अभी से यदि कोई कष्ट दुख पड़ेगा तो क्या करेंगे? हे कृष्ण रक्षा, ऐसे प्रार्थना। किसी तरह वो लोग नहीं कर सकते, ओंकार को जपने वाले इसको नहीं कर सकते। ओंकार में दया धर्म इत्यादि ने बस साक्षित्व और ये जगत सृष्टि स्थिति प्रलय ये सब बातें हैं, किंतु ममत्व उसमें नहीं है। कृष्ण में ममत्व भी है। कृष्ण में ये आनंद सिंधु अश्वादन ब्रह्मानंद तार आगे खद्यो तपसा अब आगे का श्लोक चल रहे हैं। ये क्या बतलाया? गोपियों के का महात्म्य बतलाया। गोपियां सबसे श्रेष्ठ संग हैं। इनके अब संग की महिमा से डायरेक्ट रूप में बतला रहे हैं। गोपियों का संग किसने किया? जो भगवान को इसी रूप में पाया
सुति चरी उपंतचरी दंड कारण
उसी को ये करे मत कामारमणम जार स्वरूप विदो बला ब्रह्माम परमं प्रापु संगात सत सहस्त्र सह। सत सहस्त्र सह गोपियों का लोग संग करके और कृष्ण को पाया किस रूप में? चार बुद्धि गोपियों को जैसे वो मिले थे उसी रूप में उसको प्राप्त कर दे। ये सब इसकी व्याख्या हम लोग कल करेंगे, किंतु अभी इस थोड़ा सा ये बतला देते हैं, थोड़ा सा ये समझिए। जार बुद्धि से गोपियों के समय में ही किसने अनुगमन किया, गोपियों का संग किया? पुलिंदी। उसमें बतला रहे हैं स्वरूप अभिदो अस्वरूप अभिदो, भगवान का स्वरूप नहीं जानती और अपना भी स्वरूप नहीं जानती, कोई ज्ञान नहीं। जो व्रत तपस्या नहीं किया, अपुलिंद कन्याएं खूब सुंदरी हैं तो खूब सुंदरी भी नहीं है, किंतु अपने अपने स्वरूप के प्रति भी ध्यान नहीं गया। मैं काली कल उठी हूँ क्या हूँ, किंतु चाहिए क्या? गोपियों के जो प्राण बल्लभ हैं वो हमारे प्राण बल्लभ हो, देखो तो अच्छा उनको मिले कि नहीं मिले है? गोपियों का संग कब किया, कैसे किया? गोपियां कृष्ण से मिली और उनके अंगों का कुमकुम कृष्ण के चरणों में लगने से वो घास में लगे और वो घास में लगने से उन्होंने देखा कौन वो गई हैं कंडे बिनने के लिए, लकड़ी बिनने के लिए, और उसको देखा और साथ ही साथ में काम कृष्ण के प्रति जगा। अब वो काम लौकिक है कि पारलौकिक है क्या जाने? पारलौकिक उस समय है, शुद्ध है, वो तो कुछ जानती ही नहीं है, साधन भजन भी कुछ नहीं किया और कोई सुना भी नहीं, कुछ नहीं किया, केवल गोपियों के उस कुमकुम को वो भी कृष्ण के चरण की सहायता से उस घास में लगा हुआ है, उस घास पर से उस कुमकुम को लगाया और तन में
लग गया।
लौकिक वर्णन किया,
यहाँ तक कि गोपियों में प्राकृत अंश दिखाया कि प्रचंड काम जब तो नहीं रहे तो ये लीला भी नहीं होगी, ऐसा भी दिखाया।
यही हम लोगों के लिए एक भरोसा है, यही हम लोगों के लिए भरोसा और कुछ भरोसा है। यदि उनका हो गया तो हम लोगों को नहीं होगा, जरूर हो सकता है, बस उनका जैसा लोभ हो। लोभ होने पर एकदम अपराकित हो गया ऐसा मत समझो, लोभ किस अवस्था में होगा? अत्यंत निकृष्ट अवस्था में भी उन महात्माओं के संग से, इसलिए गोपियों का संग दिखता है। गोपियों का कोई डायरेक्ट संग नहीं, उस कुमकुम का जो उनके अंगों का था वो भी घास पर लगा, घास का संग हुआ और उसे तो बतलाओ तो गोपियों की संग की महिमा इतनी अधिक है, एक कनिष्ठ वैष्णव के संग का महात्म है, उससे भी अधिक महात्म है किसका? मध्यम। उससे भी अधिक महात्मा है, उससे भी स्वरूप प्राप्त उत्तम, उससे भी निर्भूत कसाय, और उनसे भी स्वरूप प्राप्त प्रेमी, और उनसे भी किसका, ये शांत रस वालों का, उनसे भी श्रेष्ठ किसका,
दास,
उससे भी सख, और उससे भी अधिक बासल, उससे भी अधिक सख, आधा वाला सख पीछे ले जाओ, आधा वाला आगे ले जाओ, सुसख वाला उनका चला जाएगा महाभाव तक, उनका जाएगा अनुराग तक, और इनसे भी बड़ा ये गोपियों, गोपियों के संग की महिमा इतनी बड़ी है, इसको समझो। यदि उनका संग न, उनकी कथाओं का भी संग हुआ तो ये गोपियों का संग हुआ, यदि उनका संग नहीं हुआ, जहां पर उनकी चरण धूली पड़ी थी उस स्थान में भी यदि हम जाएं, उसकी धूली लगाएं, तो क्या होगा। जैसे कहां, रसस्थली वृंदावन में, सेवा कुंज में, निधुवन में, राधा दामोदर जी के वो जो स्थान है वो, उसको भी सेवा कुंज ही कहेंगे। नंदगांव में जाएंगे हम लोग, वहां पर ठेर कदम में उद्धव क्यारी में, जावट में, कोकिल वन में, मधुबन में, ताल वन, कुमुद वन, काम्य वन, कोकिल वन, भद्र वन, माट वन, भांडीर वन में जहाँ जाएंगे उनकी चरण धूली पड़ी हुई, उसी में जाकर के लोट पोट करेंगे। अरे वो आत्मा में नहीं लगी, आत्मा में लगी वो धूली किस में लगी, शरीर में तो भी हो जाता है, कितनी प्रभावशाली उनकी चरण की धूली है, इसलिए होता है, भले ही आत्मा से नहीं हो रही, किंतु आत्मा तो इसमें है, इसको छेद करके भीतर चला जाएगा उनका प्रभाव, और उन पर कृपा कर देगा, ऐसी है। भले ही कामना रहे, संसार की भी रहे, सब की रहे, किंतु गोपियों की चरण की धूली की इतनी महिमा ये बतला रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं वंदे नंद ब्रज स्त्री नंद पाद रेणुम आज यही तक है। पंचागल कर दस। गौरचंद्राय राधिकायै तदानय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिलेदो तं सर्वभूतहृदयम् तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मयमावतरणम् भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रम् स्मरामि राधाम् मधुरस्मितास्यां वदामि राधाम् करुणाभराद्रां ततो मम नास्ति गतिर्नपा सत्संग की महिमा बतला रहे और सत्संग की महिमा बतलाते बतलाते गोपियों का संग समस्त संगों से सबसे श्रेष्ठ संग है, उसी को यहाँ पर बतला रहे। साधारण रूप में भक्तों का संग चाहिए, भक्तों में बहुत तरह के भक्त हैं, बहुत तरह के स्तर हैं, अंततः अपने से श्रेष्ठ भक्तों का संग करना चाहिए। किंतु बतलाया ये भक्तों में भी उत्तम भक्तों का, उत्तम भागवतों का संग बहुत ही प्रभावशाली होता है। मध्यम भक्तों का होगा संग करने से वे शुद्ध गुरु के पास में ले जाएंगे, हरि कथा के द्वारा हमारा चित्त शोधन करके भक्ति में लगाएंगे। किंतु ये नहीं होगा किसी के ऊपर में हाथ रख देंगे और जब भी प्रेम हो जाओ और नाचने लग जाओ। जैसे रसकानंद जी ने पानी उठाया और घर लग के हाथियों को छिड़क दिया
पगला,
और पगले हाथी साहब घुटने टेक करके हरी बोल कर ऐसे सब देखा, वो चीज नहीं किंतु होगा। किंतु हम लोगों को इसीलिए उत्तम भागवतों के सहारे बैठे रहना होगा, ऐसा नहीं उनके लिए ही प्रतीक्षा करेंगे, साधन भजन नहीं करेंगे, किसी का संग नहीं करेंगे तो वैसा ही, नहीं तो करेंगे ऐसा। अंततः अपने से श्रेष्ठ तत्व सिद्धांत समन्वित रसिक वैष्णवों उनका संग करना चाहिए, मध्यम अधिकारी होने पर। विशेष करके हम लोगों के लिए मध्यम अधिकारी का जितना फल होगा और लोगों का फल उतना नहीं होगा, क्योंकि हमारे निकट कुछ है, इसलिए उनका संग हमारे लिए उनके संगों को समझ सकते हैं। अन्यथा महाभागवतों के जो विचार हैं या आचरण हैं हम लोग कभी कभी नहीं समझ सकते हैं, उनके प्रति असद्भा। किंतु फिर भी बताए जो कि तीन प्रकार के उत्तम वैष्णव में भागवतों में
मूर्छित कसाय
निर्भूत कसाय स्वरूप प्राप्त। मूर्छित कसाय मैंने नारद जी पहले जैसे दशा में एक बार भगवान का दर्शन पाया और उनके जितने कसाय अनर्थ इत्यादि हैं, अब ऐसा अनर्थ तो रहा नहीं किंतु जो कुछ भी अब है वो सुप्त अवस्था सोए हुए हैं, जग सकते हैं किंतु सोए हुए। दूसरा भूत निर्भूत कसाय सुखदेव गोस्वामी का निर्भूत कसाय, सब भूल गए अब वो कभी उभरेंगे भी नहीं और फिर उठने की उनकी अब कोई संभावना नहीं है, और
प्राप्त
स्वरूप प्राप्त नारद जी तीसरी स्थिति, दूसरी स्थिति जब भगवत दर्शन के बाद में, जबकि भगवान का दर्शन हुआ इसके बाद इस शरीर को छोड़ दिया, नृपतत्व पंच भौतिकी जब हो गया, स्वरूप प्राप्त हो गए, परिकर शरीर में आ गए, तब इसी रूप में उन्होंने नारद जी पर, प्रहलाद के ऊपर में और लाखों लोगों के ऊपर में उन्होंने कृपा की। ये तो हुआ साधु संग, अभी शरीर में है और उनका संग हम लोग पा सकते हैं, ये श्रेष्ठ संग है। ऐसे ऐसे निर्भूत कसाय जो हो गए हैं या स्वरूप प्राप्त भी हैं, उनमें उद्धव जी को श्रेष्ठ बताया, पता ना उद्धव जी को, कृष्ण के परम मित्र हैं, मंत्री हैं, प्रवरो हैं, मैंने सभी कुछ उनके, और उनको ये बतलाया कि उनको हमसे न्यून मत समझो, वो हम ही जैसे हैं, मन निन्नो, हमारे से न्यून मत समझो। और भी उनको कहा, हमारे प्रिय आत्मज्योनी न शंकर न शि न एव आत्मा यथा भवान, आप जैसे हमारे प्रिय हैं वैसे आत्मज्योनी ब्रह्मा जी हमारे प्रिय नहीं। आत्मज्योनी माने
ब्रह्मा,
आत्मज्योनी माने क्या,
अपने नाभि को मन से, भगवान के नाभि से निकले,
वो किसी गर्भ से नहीं निकले, इसलिए आत्मज्योनी। और शंकर, शंकर कौन है, शंकर भगवत स्वरूप, भगवत स्वरूप हैं ये शंकर। और लक्ष्मी जी उनके वक्ष तक चलकर सब समय विराजमान रहने वाली लक्ष्मी जी भी उतनी प्रिय नहीं, न च शंकरसन, भाई जो हैं वो शंकरसन भी उतने प्रिय नहीं है, भगवत स्वरूप भी हैं। और न ये आत्मा, मेरी आत्मा जो है, आत्मा माने ये हमारी जो मूर्ति है, शरीर की आत्मा मत समझो,
देव देही विधाना,
इसे वहाँ पर हमारी जो स्वरूप की मूर्ति है वो भी हमारी, अपना शरीर भी हमारा उतना प्रिय नहीं है जितना के है उद्धव आप। अच्छा, इसका कारण क्या है, कारण क्या बतलाओ, बतला क्या कारण,
प्रियत्व का हेतु क्या
है, वो प्रियत्व का हेतु यहाँ क्या है, जो उद्धव को इतना प्रिय माना और ब्रह्मा जी को, शंकर को, श्री को, शंकरसन को, अपने शरीर को उतना प्रिय नहीं माना, इसका कारण क्या, प्रियत्व का हेतु क्या है, इस पर विचार करना है। यहाँ पर भक्ति, भक्ति का भाव है, भक्ति माने सेवा या ममत्व है, इनके ब्रह्मा में पुत्रत्व का अंश है, भक्ति भी है, इनके पुत्र का भाव है, मैं इनका पुत्र हूँ, ये अंश प्रबल है, भाई का अंश है, भक्ति का प्रबल कम है, शंकर जी उनके स्वरूप हैं किंतु भक्ति का भाव कम है, मैं रुद्र हूँ, ये काम हमारा है, जैसे ब्रह्मा का पद का और पुत्र का भाव लेकर के, भक्ति का भाव नहीं। अच्छा, लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है, शंकरसन जी उनके भाई, ये सब संबंध है ना,
सबके अंदर ऐसे जो वहाँ पर
असभर, तो पीछे का विचार करेंगे, और एक विचार हम कर रहे हैं, अच्छा इनको समझने के लिए और एक थोड़ा सा स्टेप ऊपर चले जाओ, नंद बाबा और वसुदेव जी को लो, नंद बाबा वसुदेव जी में कृष्ण के कौन अधिक प्रिय हैं,
नंद
बाबा, क्यों,
ममत्व तो अधिक है,
पुत्रत्व ही कारण नहीं है या कोई संबंध ही कायम नहीं है, वही मूल कारण नहीं है, ये मेरे मेरे पिता हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरे भाई हैं, आत्मी हैं, स्वजन हैं, इस पर निर्भर नहीं करता है। उन्होंने मांगा जो कृष्ण के प्रति हमारा वात्सल्य प्रेम हो, इन्होंने कहा कि हमारा पुत्र हो कृष्ण, भगवान पुत्र हो, भगवान पुत्रत्व से वशीभूत नहीं है। उनका पुत्र तो नरकासुर भी था, किंतु उसे प्रीति उससे नहीं हुई। इसलिए प्रीति का कारण क्या है? भक्ति जो सेवा की भावना है, ममत्व की भावना है, ये चीज है भावना। इसलिए केवल पुत्रत्व, पितृत्व, मातृत्व ये सब अधिक नहीं है। इसलिए वो भाव होना चाहिए। वसुदेव जी की अपेक्षा लाख गुण भाव है नंद बाबा यशोदा जी में। इसलिए उन्होंने भगवान से ये मांगा।